पदार्थ प्रमुख है, मैटर इज प्राइमरी। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पदार्थ अर्थात भौतिक प्रकृति को प्रमुख मानता है। मनुष्य की भौतिक परिस्थितियां ही विचार को जन्म देती हैं। विचार पदार्थ के सहारे विकास करता है। विश्वात्मा या निरपेक्ष विचार एब्सोल्यूट आइडिया कुछ नहीं। प्रत्येक घटना का आधार भौतिक जगत है। चेतना भौतिक पदार्थ के पीछे चलती है और भौतिक पदार्थ का आंतरिक विरोधी विचार को संचालित करता है। प्रकृति तथा जीव वैसे एक सत्य है, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। मार्क्स लिखता है कि विचार को उस पदार्थ से अलग करना असंभव है जो विचार करता है। समस्त परिवर्तनों का विषय पदार्थ है। संक्षेप में, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सामाजिक तथ्यों का भौतिक संघर्ष के आधार पर वैज्ञानिक अध्ययन करता है। वह प्रत्येक घटना को अन्य घटनाओं से संबंधित संचालित मानता है। उसकी निरंतर गतिशीलता और संचित परिमाणात्मक कारकों के फलस्वरूप उत्पन्न विस्फोटक अथवा क्रांतिकारी परिवर्तन में विश्वास करता है और उसके आंतरिक विरोध को परिवर्तन का कारण मानता है। सामाजिक क्षेत्र में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को मार्क्स ने वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किया है। आर्थिक व्यवस्था उत्पादन की पद्धति पर निर्भर है और भौतिक उत्पादन की प्रक्रिया सामाजिक, राजनीतिक तथा आध्यात्मिक प्रक्रियाओं को निर्धारित करते हैं। प्रत्येक समाजवाद सामाजिक परिवर्तन परिमाणात्मक विरोधों के संचय का परिणाम है जो क्रांति रिवॉल्यूशन पर आधारित है। मार्क्स ने ऐतिहासिक तथ्यों के माध्यम से व्यक्त किया है कि समाज सदा से दो विरोधी शक्तियों वाद और प्रतिवाद का संघर्ष स्थल रहा है। सदा ही इस संघर्ष ने एक नवीन व्यवस्था संवाद सिंथेसिस को जन्म दिया है। ये विरोधी शक्तियां दो विरोधी वर्गों क्लासेस के रूप में देखी जा सकती हैं। प्राचीन काल में मालिक और दास, मध्यकाल में सामंत और किसान तथा आधुनिक युग में पूंजीपति और मजदूर वर्ग हैं। उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन होते ही एक वर्ग की शक्ति बढ़ जाती है। यह वाद थेसिस की अवस्था है। दूसरा वर्ग विरोध, पृष्ठ संख्या 96। भूमि और औजार नहीं थे, उनके पास केवल व्यक्तिगत उपभोग की कुछ चीजें ही थी। क्षम्यताम, पृष्ठ संख्या 94। प्रतिवाद एंटीथेसिस करता है। क्रांति होती है और एक नवीन सामाजिक व्यवस्था का जन्म होता है। निष्कर्ष, मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद समाजवादी व्यवस्था की अनिवार्य स्थापना से प्रेरित है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर मार्क्स का विश्लेषण यह प्रकट करता है कि दासता की समाप्ति हुई, सामंतशाही का अंत हुआ और अब पूंजीवाद का विनाश अवश्यंभावी है। सामाजिक विकास वर्ग संघर्ष से ही होता आया है। आज पूंजी यदि वाद है तो श्रम उसका प्रतिवाद। अतः यह निश्चित है कि इनके संघर्ष से उत्पन्न क्रांति एक नवीन समाज व्यवस्था को जन्म देगी, जिसे मार्क्स समाजवादी व्यवस्था कहता है। मार्क्स वर्ग और वर्ग संघर्ष, क्लास एंड क्लास स्ट्रगल। मार्क्सवादी विचार के अनुसार मनुष्य साधारणतया एक सामाजिक प्राणी है, परंतु अधिक स्पष्ट और आधार रूप में वह एक वर्ग प्राणी है। मार्क्स का कहना है कि किसी युग में जीविका उपार्जन की प्राप्ति के विभिन्न साधनों के कारण मनुष्य पृथक पृथक वर्गों में विभाजित हो जाते हैं और प्रत्येक वर्ग में एक विशेष वर्ग चेतना उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार एक समय की उत्पादन प्रणाली ही उस समय के वर्गों की प्रकृति को निश्चित करती है। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या को स्वीकार कर मार्क्स ने इतिहास को वर्ग संघर्ष के रूप में देखा। इस सिद्धांत को समाज के ऊपर लागू कर मार्क्स ने उसे वर्गों में विभाजित किया है और इस तथ्य को स्थापित किया है कि इन वर्गों के मध्य सदैव संघर्ष विद्यमान रहता है। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के अनुसार जितने प्रकार के समाजों का कभी अस्तित्व रहा है, उन सबका इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। वर्ग की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास। मार्क्स कहते हैं कि इतिहास में अब तक जितनी भी सामाजिक व्यवस्थाएं रही हैं, उनमें संपत्ति का विवरण और समाज का वर्गों एवं श्रेणियों में विभाजन इस बात पर निर्भर रहा है कि समाज में क्या और कैसे उत्पादन हुआ। तथा उपज का विनिमय कैसे हुआ। मार्क्स वर्गों का आधार सामाजिक या धार्मिक नहीं मानता। उसके अनुसार तो वर्गों का आधार आर्थिक ही रहा है। वे लिखते हैं, सामाजिक वर्ग ऐतिहासिक परिवर्तन की इकाइयों तथा आर्थिक व्यवस्था द्वारा समाज में निर्मित श्रेणियां दोनों ही हैं। मार्क्स कहते हैं कि साधारणतः व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, किंतु अधिक स्पष्ट रूप में वह एक वर्ग प्राणी क्लास एनिमल है। प्रत्येक युग में जीविकोपार्जन के लिए कोई न कोई साधन अवश्य ही प्रचलित रहे हैं। साधन की भिन्नता के कारण ही मनुष्य विभिन्न वर्गों में विभाजित रहे हैं तथा उनमें वर्ग चेतना भी पाई गई है। समाज में वर्गों का निर्माण क्यों? Why class formation in society? अति प्राचीन समय में समाज में कोई वर्ग पृष्ठ संख्या 95 व्यवस्था नहीं पाई जाती थी। सभी वस्तुएं प्रकृति में सहज ही उपलब्ध थी, जिनसे व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। प्रकृति द्वारा प्रदत्त जीवित रहने के साधनों का वितरण भी समान था। अतः वर्गों का जन्म नहीं हुआ और शोषण की समस्या भी नहीं हुई थी। मार्क्स के अनुसार समाज में सर्वप्रथम वर्ग प्राचीन साम्यवादी युग के अंतिम चरण में विकसित हुए। आर्थिक दृष्टि से वर्गों का विकास अतिरिक्त उत्पादन तथा वितरण में असमानता के कारण हुआ। इससे निजी संपत्ति की आवश्यकता ने जन्म लिया। दास युग में जब कैदियों से गुलामों की तरह काम लिया जाने लगा तो वर्गों की उत्पत्ति हुई। उधार लेने वाले व्यक्तियों के साथ भी दासों की तरह ही व्यवहार किया जाता था। मानसिक तथा शारीरिक श्रम में अंतर तथा आर्थिक असमानताओं के आधार पर समाज का श्रेणियों में विभाजित होना और इन श्रेणियों द्वारा वर्गों का रूप ले लेना समाज में वर्ग विभाजन के आधार रहे हैं। विभिन्न समाजों में वर्ग क्लास इन वेरियस सोसाइटीज। मार्क्स कहता है कि अब तक जो ज्ञात इतिहास है उसके सभी युगों और समाजों में वर्ग व्यवस्था सदैव विद्यमान रही है। उसने कहा कि आदिम साम्यवादी समाज से लेकर अब तक के सभी समाजों में हमें वर्ग देखने को मिलते हैं। हम यहाँ मार्क्स द्वारा वर्णित विभिन्न समाजों में वर्ग व्यवस्था का उल्लेख करेंगे। एक आदिम साम्यवादी समाज में वर्ग क्लास इन प्राइमिटिव कम्युनल सोसाइटी। यह इतिहास का प्रथम युग है। इस युग में लोग गोत्र पर आधारित कबीलों और समुदायों में रहते हैं। उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति विशेष का नहीं वरन संपूर्ण गोत्र या कबीले का स्वामित्व होता था। सब लोग मिलाकर उत्पादन का कार्य करते थे। सामूहिक श्रम के कारण उत्पादन के साधनों और उत्पादित वस्तुओं पर समूह के सभी लोगों का संयुक्त स्वामित्व होता था। समाज में श्रम विभाजन लिंग भेद के आधार पर पाया जाता था, इसलिए स्त्री और पुरुष भिन्न भिन्न कार्य को संपन्न करते थे। इसी प्रकार से आयु भेद के आधार पर भी बालक युवा और वृद्धों में भी श्रम विभाजन पाया जाता था। दो दासत्व युग में वर्ग क्लास ऑफ स्लेव सोसाइटी। धीरे धीरे भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ और दास मूलक समाज की स्थापना हुई। इस युग में मनुष्य कृषि कार्य पशुपालन और दस्तकारी करने लगा। समाज में निजी संपत्ति के विचारों का उदय हुआ और श्रम विभाजन भी पनपने लगा। यह युग अपने पूर्व युग से बिल्कुल भिन्न था, क्योंकि सामाजिक उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व के स्थान पर कुछ ही लोगों का स्वामित्व हो गया। उत्पादन के साधनों जैसे भूमि, श्रम, औजार, पशुओं, बीजों आदि पर समुदाय के कुछ लोगों का ही स्वामित्व था। इनका अपना एक वर्ग बन गया, जिसे दास स्वामी कह सकते हैं। दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास उत्पादन के साधन पृष्ठ संख्या 96 भूमि और औजार नहीं थे। उनके पास केवल व्यक्तिगत उपभोग की कुछ चीजें ही होती थी। इन्हें समाज के संपन्न वर्ग ने अपना दास बनाया और उनसे बलपूर्वक काम लिया जाने लगा। इस समाज ने पूर्व समाज की अपेक्षा बहुत आर्थिक उन्नति की। इस युग में नगरों का निर्माण हुआ, व्यापार का विकास हुआ, कृषि और उत्पादन के लिए धातुओं के औजार बनाए गए, लोहे के हथियारों तथा रण कौशल से सुसज्जित बड़ी बड़ी सेनाएं खड़ी की गईं। विलासिता की वस्तुओं का निर्माण हुआ तथा हस्तशिल्प का पर्याप्त विकास हुआ। इस प्रकार दासत्व युग में दास और मालिक दो वर्गों का उदय हुआ। 3. सामंती समाज में वर्ग, क्लास, फ्यूडल सोसाइटी। सामंती समाज में भी दो वर्ग थे, एक तरफ सामंत फ्यूडल लॉर्ड्स और दूसरी तरफ अर्धदास किसान सेफ्स। सामंतों के पास उत्पादन के साधन और विशेषतः भूमि थी, यही लोग सत्ताधारी भी थे। अर्धदास किसान सामंतों के अधीन थे और उनसे खेती का कार्य करवाया जाता था। यद्यपि इनकी स्थिति पूर्ण रूप से दासों जैसी तो नहीं थी, किंतु इन पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध थे। भूस्वामी सामंत ही अर्धदास किसानों के श्रम के संगठन करता थे और उनके द्वारा उत्पादित अतिरिक्त वस्तुओं का अधिकांश भाग वे स्वयं हड़प जाते थे। इस युग में निजी संपत्ति की धारणा प्रबल हुई। सामंतों के द्वारा किसानों का शोषण भी होता रहा और इन दो वर्गों में संघर्ष पूर्व समाज की तुलना में अधिक स्पष्ट था। 4. पूंजीवादी समाज में वर्ग, क्लास इन कैपिटलिस्टिक सोसाइटी। इस समाज की स्थापना मशीनों के आविष्कार तथा बड़े बड़े उद्योग धंधों के कारण हुई। इस समाज में उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार होता है तथा उत्पादन का कार्य श्रमिकों के द्वारा कराया जाता है। मार्क्स श्रमिक वर्ग को सर्वहारा वर्ग कहता है और पूंजीपति वर्ग को बुर्जुआ वर्ग। सर्वहारा वर्ग पूंजीपति वर्ग का विरोधी होता है, किंतु साथ ही उसकी एक आवश्यक शर्त भी होती है। सर्वहारा वर्ग के पास उत्पादन के साधन नहीं होते, अतः वह पूंजीपति को अपना श्रम बेचकर अपनी जीविका अर्जित करता है। पूंजीपति वर्ग सर्वहारा वर्ग की मजबूरी का फायदा उठाता है और उसका आर्थिक शोषण करता है। इस प्रकार मार्क्स यह मानते हैं कि आर्थिक उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर समाज में दो वर्ग विद्यमान रहे हैं, दासत्व युग में दास और उनके स्वामी, सामंती युग में सामंत तथा अर्धदास किसान और वर्तमान पूंजीपति युग में पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग विद्यमान रहे हैं। प्रत्येक समाज में इन दो वर्गों की प्रमुख विशेषता यह रही है कि एक के हाथों में उत्पादन के साधन केंद्रित रहे हैं और दूसरा इनसे वंचित रहा है। इसी आधार पर प्रथम वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता रहा है तथा ये वर्ग अपने अपने हितों को लेकर परस्पर संघर्षरत रहे हैं। इस प्रकार सभी समाजों में सदैव शोषक और शोषित दो वर्ग रहे हैं, जिन्होंने समाज में वर्ग संघर्ष को जन्म दिया। वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल। मार्क्स यह मानते हैं कि इतिहास के प्रत्येक युग और प्रत्येक समाज में सदैव दो विरोधी वर्ग रहे हैं, शोषक और शोषित वर्ग, और ये दोनों परस्पर संघर्षरत रहे हैं। जब शोषक वर्ग की शोषण नीति असहनीय हो जाती है और उत्पीड़न बढ़ जाता है तो दोनों वर्गों में संघर्ष स्पष्ट हो जाता है। मार्क्स ने अपनी प्रसिद्ध कृति कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में लिखा है, अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है। स्वतंत्र व्यक्ति तथा दास, कुलीन वर्ग तथा साधारण जनता, सामंत तथा अर्धदास किसान, श्रेणीपति तथा दस्तकार, एक शब्द में शोषक तथा शोषित, सदा एक दूसरे के विरोधी होकर कभी प्रत्यक्ष तो कभी अप्रत्यक्ष किंतु अनवरत युद्ध करते रहे हैं। इस संघर्ष का अंत हर बार या तो समाज के क्रांतिकारी पुनर्निर्माण में या संघर्षरत वर्गों के सर्वनाश में हुआ है। इस कथन से स्पष्ट है कि मार्क्स सभी समाजों में वर्ग और वर्ग संघर्ष को ऐतिहासिक सत्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि मार्क्स ही पहले व्यक्ति नहीं है जिन्होंने वर्ग संघर्ष का उल्लेख किया है, उनसे पहले भी पूंजीवादी इतिहासकारों ने वर्ग संघर्ष के ऐतिहासिक विकास का और पूंजीवादी अर्थशास्त्रियों ने वर्गों की आर्थिक संरचना का उल्लेख किया था। वर्ग एवं वर्ग संघर्ष के संदर्भ में मार्क्स ने 3 नई बातें जोड़ी हैं। 1. विभिन्न वर्गों का अस्तित्व उत्पादन के विकास के किसी ऐतिहासिक क्रम विशेष के साथ ही जुड़ा हुआ होता है। 2. वर्ग संघर्ष का चरमोत्कर्ष आवश्यक रूप से सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व होता है। 3. अधिनायकत्व की यह अवस्था अपने आप में सभी वर्गों के उन्मूलन और वर्गहीन समाज की ओर संक्रमण करने की एक व्यवस्था होती है। मार्क्स के वर्ग संघर्ष की धारणा में संघर्ष तथा पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग की अवधारणाएं ही महत्वपूर्ण हैं, अतः उन्हें समझ लेना आवश्यक है। और संघर्ष, संघर्ष का तात्पर्य निरंतर युद्धरत रहने से नहीं है, इसका तात्पर्य है कि समाज में एक वर्ग अवश्य होता है जिसकी आवश्यकताओं की पूर्ति न होने पर वह असंतुष्ट रहता है, और इस असंतोष को वह हड़ताल तथा असहयोग आदि कई रूपों में प्रकट करता है। जब यह असंतोष असहनीय हो जाता है तो वह क्रांति का रूप ले लेता है, जिसमें शोषक वर्ग पराजित होता है और शोषित वर्गों की विजय होती है। दो, ब, पूंजीपति। पूंजीपति वह व्यक्ति होता है जिसका उत्पादन के साधनों जैसे भूमि, कारखानों, कच्चे माल, पूंजी और कार्य पर स्वामित्व होता है। यह वर्ग समाज का शक्तिशाली और ऐश्वर्य संपन्न वर्ग होता है। उत्पादन, कीमत, वितरण, क्रय विक्रय, पृष्ठ संख्या 98, इसके पास निर्णायक शक्ति होती है। कर क्रय विक्रय पर इसके पास निर्णायक शक्ति होती है। अपने लाभ को बढ़ाने के लिए यह श्रमिक और उसके परिवार का शोषण करता है। यह वर्ग अतिरिक्त मूल्य को हड़पने तथा परोपजीवी होता है, हो जो सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं वरन अपने लाभ के लिए ही उत्पादन करता है। सर्वहारा वर्ग, यह वर्ग उद्योगों में श्रम कर अपनी आजीविका कमाता है। इसके पास उत्पादन के अपने साधन नहीं होते, वरन पूंजीपति को अपना श्रम बेचकर ही यह जीवन यापन करता है। यह वर्ग पूंजीपति वर्ग, जिसे मार्क्स बुर्जुआ वर्ग कहता है, कि दया पर निर्भर है। यह अपनी मजदूरी स्वयं निर्धारित नहीं कर सकता, वरन बुर्जुआ की इच्छा और बाजार मूल्य से ही यह तय होती है। यह अपनी पसंद का जीवन भी व्यतीत नहीं कर सकता। सिद्धांत का महत्व, मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय महत्व रखता है। संसार भर में बुर्जुआ प्रवृत्ति बढ़ रही है, अतः प्रत्येक स्थान पर पूंजीवाद के विरुद्ध सर्वहारा वर्ग संघर्ष करेगा और हिंसक क्रांति के द्वारा राज्य व्यवस्था से पृथक नहीं मानता, बल्कि एक विशेष प्रकार की आर्थिक व्यवस्था को स्थिर रखने का साधन समझता है। अतः उसने सर्वहारा वर्ग को राजनीतिक दल के रूप में संगठित होने का उपदेश दिया है। उसका विचार है कि केवल सर्वहारा वर्ग ही पूंजीवाद ही वर्ग से संघर्ष कर सकता है। शेष वर्ग उसके विरोधी होते हुए उसके साथ उसके साये में पलते हैं। सर्वहारा वर्ग की क्रांति का अर्थ है समस्त शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकना और सर्वहारा समाज के नियंत्रण में एक अधिनायकवादी शासन स्थापित करके वर्गहीन समाज व्यवस्था की स्थापना करना। इस प्रकार वर्ग संघर्ष की समूल समाप्ति के लिए मार्क्स वर्ग संघर्ष को आवश्यक मानता है। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत विकास के सिद्धांत के समान है, जो अस्तित्व के लिए संघर्ष और चुनाव के सिद्धांत पर आधारित है। संक्षेप में मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है। एक, वर्ग संघर्ष मानव इतिहास का आधारभूत नियम है जो परिवर्तनों को जन्म देता है। दो, वर्ग संघर्ष उत्पादन प्रक्रिया से संबंधित है। उत्पादन के नए प्रकार पुराने प्रारूपों का स्थान लेते हैं और नए वर्ग पुराने वर्गों का स्थान लेने की चेष्टा करते हैं, अतः वर्ग संघर्ष या क्रांति होती है। तीन, भौतिक आविष्कार उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन करते हैं और नए वर्गों को आधार प्रदान करते हैं। धीरे धीरे सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन के प्रति शोषित वर्ग जागरूक होने लगता है। क्रांति अनायास न होकर प्रक्रिया का परिणाम होती है। पृष्ठ संख्या 99। चार, शासक वर्ग धर्म, परंपरा, विचार, दर्शन तथा शिक्षा और प्रचार से के द्वारा सत्ता स्थिर रखने की चेष्टा करता है। वास्तव में ये सब विशिष्ट उत्पादन व्यवस्था से संबंधित तत्व है। प्रभुता प्राप्त वर्ग की मान्यताएं ही धार्मिक और नैतिक विचार बनकर सामाजिक स्वरूप लेती हैं। पांच, शोषित वर्ग, जो आधुनिक सर्वहारा वर्ग है, पूंजीवादी व्यवस्था के अनिवार्य प्रकृति के कारण निर्धन, दरिद्र किंतु अधिक संगठित और शक्तिशाली होकर अवश्य विद्रोह करेगा और पूंजीवादी वर्ग का सर्वनाश करके वर्गहीन समाज स्थापित करेगा। आलोचनात्मक मूल्यांकन क्रिटिकल इवैल्यूएशन। संक्षेप में मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत की आलोचना निम्नलिखित आधारों पर की जा सकती है। एक, संघर्ष की अपेक्षा सहयोग आर्थिक संघर्ष की अपेक्षा सहयोग अधिक। यद्यपि वर्ग संघर्ष के प्रत्येक युग और प्रत्येक समाज में होता रहा है, किंतु यह वह आकस्मिक और अस्थायी रूप में होता है, उसकी प्रकृति निरंतर और अनिवार्य नहीं है। दो, मार्क्स के विचार में समस्त वर्ग संघर्ष का आधार आर्थिक है, यह अनुचित व्याख्या है। संसार में धर्म प्रजाति और राष्ट्रीय आधार पर अनेक महान और विभत्स संघर्ष होते हैं, जिनकी व्याख्या आर्थिक आधार पर नहीं की जा सकती है। तीन, समाज में केवल विरोधी वर्ग ही नहीं होते, विरोधी मान्यता रखने वाले वर्गों में भी संघर्ष आवश्यक नहीं। मार्क्स के स्वप्नों की साकार समाज रचना सोवियत रूस ने स्पष्ट शब्दों में सह अस्तित्व को एग्जिटेंस के सिद्धांत को स्वीकार किया है। चार, मार्क्स के बुर्जुआ तथा सर्वहारा वर्ग बहुत अस्पष्ट हैं, उन जिनसे कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता। पांच, मार्क्स का यह मत भी त्रुटिपूर्ण है कि अब तक का समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध दो विरोधी राष्ट्रों के बीच हुए थे, दो वर्गों के बीच नहीं। इस प्रकार राष्ट्रीय भावना भी विरोध को जन्म देती है। निष्कर्ष, उपर्युक्त आलोचनाओं के बावजूद यह सत्य है कि वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन करके मार्क्स ने विचार को क्रिया के रूप में बदलने की प्रेरणा दी। उसने दर्शन को विज्ञान का वस्त्र पहनाया, सर्वहारा वर्ग को साहसपूर्ण शब्दों में क्रांति की आवश्यकता बताते हुए उन्हें निर्बल से सबल, शोषित से शासक और रंग से राजा बनने की प्रेरणा दी। इतिहास की प्रवृत्तियां, मार्क्स ने मानव इतिहास की मूल प्रवृत्तियों को चार भागों में वर्गीकृत किया है, एक एशियाई, दो प्राचीन यूरोपीय, तीन सामंतशाही, चार पूंजीवादी बुर्जुआ। इन पृष्ठ संख्या 100 चारों विभागों को उन्होंने प्रागैतिहासिक बताया है। उनके मतानुसार मानव का वास्तविक इतिहास तो साम्यवाद के आगमन से प्रारंभ होगा। एशियाई सामाजिक व्यवस्था के निदर्शन स्लाव, ग्राम और भारतीय समाज हैं। इनका लक्षण सामूहिक संपत्ति और श्रम है। इनके मुख्य व्यवसाय कृषि और उद्योग हैं। कुछ कारणों से इस आदिम साम्यवाद का अंत हो गया। यूथ विवाह की प्रथा कम होने लगी और मातृसत्तात्मक व्यवस्था के स्थान पर पितृसत्तात्मक विधान लागू होने लगा। अतः धनवान और निर्धन का भेद उत्पन्न हो गया। लोहे के आविष्कार ने आर्थिक और सामाजिक विकास को एक नवीन दिशा प्रदान की। फलतः उक्त व्यवस्था का अंत हो गया और दासता का आविर्भाव हुआ। दासता उत्पादन की एक विशेष विधि थी। इसका लक्ष्य औद्योगिक विकास, व्यापारिक प्रसार और धन संचय था। सूदखोरी और मुनाफाखोरी ही इसका एकमात्र धर्म था। परिणामतः निर्धनता के कारण उत्पादन की शक्तियों का पूर्ण उपयोग संभव न रहा और उक्त सामाजिक व्यवस्था का अंत हो गया, क्योंकि विवश होकर स्वामी अपने दासों को मुक्त करने लगा। सामंतशाही युग में लघु मात्रा में कृषि और छोटे छोटे उद्योग धंधों का विकास हुआ। दासों के स्थान पर कर्मकर काम करने लगे। कर्मकरों को जमींदारों को लगान देना पड़ता था और बेगार भी करना पड़ता था। नगरों में श्रेणियों द्वारा नियमित और संचालित उद्योग और व्यवसाय के अधीन कारीगर कार्य करते थे। यह श्रेणी विधान पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में बाधक है, अतः इस व्यवस्था का अंत होने लगा। परिणामतः पूंजीवाद का जन्म हुआ। पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन और विनिमय में बड़ी बड़ी धनराशियों की आवश्यकता पड़ने लगी। सामंतशाही के छोटे और स्वतंत्र कर्मकर कृषकों को भूमि से उखाड़ कर बृहद फॉर्म तैयार किए जाने लगे। भौगोलिक अनुसंधान से व्यापार और वितरण का क्षेत्र विस्तृत होने लगा। उजड़े हुए लोग वैतनिक श्रमिक बन गए। इनका उत्पादन के साधनों पर कोई भी स्वामित्व नहीं रहा। फलतः श्रम समूह स्पोलिटेरियट का जन्म हुआ। पूंजीवाद ने उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, सैनिकवाद, यंत्रवाद, संपत्ति और सत्तावाद को जन्म दिया, परंतु उपर्युक्त व्यवस्था अपने दोषों से नष्ट होने लगी। इसके स्थान पर समाजवाद, साम्यवाद की लहर दौड़ गई। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। कार्ल मार्क्स प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रत्येक ऐतिहासिक व्यवस्था में आर्थिक कारणों को निर्णायक माना है। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का सिद्धांत उन्हीं की देन है। कार्ल मार्क्स ने तो वैज्ञानिक तथा भौतिक क्रांतियों का कारण भी आर्थिक सिद्ध किया है। आर्थिक उत्पादन और उपभोग के विधान से मानव, पृष्ठ संख्या 101, इतिहास का स्वरूप निश्चित होता है। भौतिक जीवन में उत्पादन की विधि जीवन के सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक प्रक्रियाओं के लिए निर्णायक होती है। अपने इस आर्थिक व्याख्या में मार्क्स ने आदिम साम्यवाद, दासत्व, सामंतशाही, पूंजित्व एवं साम्यावस्था का वर्गीकरण भी भौतिक कार्य का आधार पर ही किया है। इतिहास का भावी युग। ऐतिहासिक व्याख्या का स्वरूप विकासात्मक होता है। कार्ल मार्क्स ने भी इतिहास की आर्थिक व्याख्या में इतिहास की गति को विकासात्मक प्रक्रिया में देखा था। इस प्रक्रिया का संकेत सदैव भविष्य की ओर रहता है। मार्क्स ने अपने सिद्धांतों को दृढ़ता के साथ अतीत पर आधारित किया, परंतु वर्तमान में वर्गहीन समाज के उद्देश्यों की पूर्ति की कठिनाइयों ने उन्हें भविष्य के विषय में सोचने के लिए विवश कर दिया। वर्गहीन समाज के संघर्ष का अभिप्राय सुखद भविष्य का निर्माण है। भविष्य के विषय में उनके दृष्टिकोण ने इस उद्घोषणा के लिए विवश कर दिया कि भावी विश्व का समाज वर्गहीन होगा, जिसमें शासक की कोई आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने वर्गहीन समाज को संबोधित करते हुए कहा था कि उन्हें अपने पूर्ण सत्य को भविष्य में प्रक्षेपित करना चाहिए। इस प्रकार मार्क्स ने इतिहास में भविष्यवाणी या भविष्य कथन करने के सामर्थ्य सिद्धांत की पुष्टि की है। मार्क्स का मूल्यांकन। कार्ल मार्क्स एक ऐसा चिंतक हुआ है जिसकी चिंतन धारा समाज के निर्धन वर्ग के लिए बड़ी मोहक थी। मार्क्स को इसके सहारे जो आभा मंडल प्राप्त हुआ, उसने उसकी इतिहासकारों में अग्रिम पंक्ति दी। परंतु विस्मय की बात है कि वह इतिहासकार के सत्य चरित्र का आदर्श नहीं था। समाजशास्त्रियों ने उसे हृदय से लगाया, जबकि उसकी विचारधारा का लक्ष्य एक काल्पनिक समाज था जो न तो इस धरती पर कभी था और न यह कि ऐसा समाज कभी भविष्य में भी विकसित हो पाएगा आशा की जा सकती है। मार्क्स इतिहास में भी अमर है, सामाजिक विज्ञानियों में भी तथा इन सबसे भी कहीं अधिक व आधुनिक राजनीतिज्ञों के लिए एक महान युग पुरुष है। मार्क्सवाद की जितनी आलोचना की जाती है वह उतना ही प्रखर होकर सामने आता है, क्योंकि वह एक ऐसा मंत्र है जो इतिहासवाद न होते हुए भी साम्यवाद है तथा राजकाजी रूपक न होते हुए भी राजनीति है, क्योंकि संसार का कोई राजनीतिज्ञ इस मंत्र को जपे बिना शाम दाम दंड भेद के पैतरों को प्रभावी नहीं बना सकता है। जब तक इस धरती पर गणतंत्रात्मक पद्धति रहेगी, मार्क्सवादी मंत्र राजनीति का अस्त्र बना रहेगा।